नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं भागवत पुराण की कथा वामन अवतार में। मित्रों, दान की हमारे धर्म में कितनी बड़ी महिमा है ये तो आप लोग जानते ही हैं। दान करने के बाद सबको अच्छा लगता है कि आपने किसी ऐसे की सहायता की जिसकी उसको आवश्यकता थी। पर क्या दान करके घमंड किया जाना चाहिए या बढ़ाई करनी चाहिए कि मैंने इतनी चैरिटी की है या कितना बड़ा काम कर दिया? आज हम भागवत पुराण की उस कथा की बात करेंगे जिसमें दुनिया के सबसे बड़े दानवीर के घमंड को तोड़ने के लिए स्वयं विष्णु जी ने अवतार लिया था। विष्णु के दशावतार में से पांचवें अवतार थे वामन भगवान। यही वामन त्रेता युग के पहले अवतार भी कहे जाते हैं। और घमंड तोड़ा गया था प्रह्लाद के पौत्र राजा बलि का। तो आइए सुनते हैं भागवत की ये बेहद इंटरेस्टिंग कहानी। दैत्य राजा बलि बहुत ही अधिक बलशाली था। इंद्रदेव को हरा करके उसने स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। प्रह्लाद भगवान विष्णु के कितने बड़े भक्त थे ये तो आप जानते ही हैं। राजा बलि दैत्य तो था पर बहुत बड़ा दानवीर भी था। ये उसमें एक बहुत बड़ा गुण था। पर राजा बलि में बहुत सारे अवगुण भी थे। राजा बलि में अहंकार कूट कूट के भरा था। इससे भी बुरी बात कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके देवताओं और ब्राह्मणों को डराता और धमकाया करता था। इसी पाप और बल के दुरुपयोग का परिणाम था कि पराक्रमी बलि ने बल से स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों पर अपना राज बना लिया था। अब आगे की बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जब इंद्र और देवताओं से उनका स्वर्ग छिन जाता है तो वो कहां जाते हैं? वो सब दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। शरण में आए को विष्णु कभी निराश नहीं करते। उन्होंने एश्योर किया कि वो राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे और इस तरह से भगवान विष्णु का धरती पर पांचवां अवतार हमारे सामने आया, उनका वामन रूप। वामन का अर्थ है एक छोटा ब्राह्मण बालक। मित्रों, आपने कई अवतारों के बारे में पढ़ा तो होगा ही जो अपने उग्र रूप से दैत्यों और राक्षसों का संहार करते रहे हैं। पर यहां तो नन्हा बालक आया था, वो भी एक ब्राह्मण के रूप में। अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में वो बालक जन्म लेता है और बस ये तो सिर्फ आरंभ था। असली कथा तो अब आगे बढ़ती है दोस्तों। नर्मदा के तट पर राजा बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। वामन जी वहां पधारे। यज्ञ पर एक ब्राह्मण के पधारने पर बलि प्रसन्न हो गया। उसने उनसे पूछा कि वो क्या कर सकता है। वामन जी बोले कि राजा बलि शुक्राचार्य का शिष्य है और इतना ही नहीं महान भक्त प्रह्लाद का वंशज भी है। राजा बलि ने अहंकार में सर हिलाया। वामन जी आगे बोले कि राजा बलि से बड़ा दानी भी तो कोई नहीं, ऐसा दानी जो वचन देकर कभी पीछे नहीं हटता। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूरा संसार बलि को जानता है। राजा बलि अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो रहा था। घमंडी और अहंकारी की यही निशानी होती है दोस्तों, और यही उनके नाश का कारण भी होता है। कभी किसी अहंकारी को यदि आपने अपने वश में करना हो तो बस इसी तरह उसको एप्रिशिएट करिए और फिर देखिए। खैर, आगे सुनते हैं। राजा बलि की प्रशंसा करने के बाद वामन महाराज बोले कि उन्हें अपने निवास के लिए केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है। वामन अवतार ने अपनी बात रख दी थी। राजा बलि हंस दिया और बोला, 3 कदम में आप कितनी भूमि नाप लेंगे, और वो भी एक छोटे से बालक के 3 पग? बलि बोला, उसके पास अथाह भूमि है और ब्राह्मण ने बहुत छोटा सा दान मांग लिया। वो चाहे तो और कुछ भी मांग सकता है, यहां तक कि पूरा का पूरा एक द्वीप भी मांग ले तो बलि देने में समर्थ है। राजा बलि ने शायद अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। वामन भगवान बोले, राजा बलि का सामर्थ्य हो सकता है बहुत ही अधिक हो, पर उनकी आवश्यकता बहुत छोटी है, तो बस जितना मांगा है बस उतना ही दे दीजिए। 3 पग धरती। दोस्तों, बलि का अहंकार देखिए, उसे उस ब्राह्मण की बुद्धि पर हंसी आ रही थी और वो अपने घमंड में श्री हरि विष्णु जी पर हंस रहा था। बलिदान के लिए तैयार हो गया। वामन जी दान का संकल्प कराने के लिए अपने कमंडल में से जल निकालने ही वाले थे, तब बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने उसे रोक दिया। कमंडल में से जल निकाल के संकल्प लेने का अर्थ है कि आप फिर अपनी कही बात से पीछे नहीं हट सकते। गुरु शुक्राचार्य पहचान गए थे कि छद्म वेश में और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही है। गुरु ने बलि को वॉन किया कि ब्राह्मण के भेष में भगवान उसका सब कुछ मांगने आए हैं। अहंकारी लोग कभी किसी से डरते नहीं हैं। राजा बलि भी शुक्राचार्य की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। शुक्राचार्य समझ गए कि बलि उनकी बात नहीं सुनेगा, पर वो श्रीहरि को जीतने भी नहीं देना चाहते थे। तब शुक्राचार्य ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और कमंडल के मुंह में उसके अंदर समा गए। वामन जी दिखते भोले थे, पर थे तो विष्णु ही, वो ये बात जान गए। वामन जी के हाथ में कुशा यानी के घास थी, उन्होंने वो कुशा अपने कमंडल में डाल दी, उससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। दर्द से छटपटाकर वो कमंडल से बाहर निकल आए। उस समय शुक्राचार्य ने बलि को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया, क्योंकि उसने अपने गुरु की बात नहीं सुनी। एक ओर विष्णु, दूसरी ओर गुरु का श्राप, अर्थात अंत निकट था। कमंडल के जल से संकल्प लिया गया और उसके बाद वामन जी अपनी धरती लेने के लिए 3 पग बढ़ाने लगे, पर उसी समय उनका आकार बढ़ने लगा। आकार विराट हो गया, पूरा ब्रह्मांड उसमें आ गया था। उन्होंने अपने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग से अंतरिक्ष और स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा, और फिर कोई उपाय भी नहीं था। उस समय संकल्प से बंधे हुए बलि ने अपना सर वामन भगवान के आगे कर दिया। बलि अपना सब कुछ गंवा बैठा था, पर भगवान ने उसे दंड नहीं दिया, क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। इसलिए भगवान ने उसे सुतल लोक का राजा बनाया। दोस्तों, इस कथा से आप अहंकार का अंत कैसे होता है ये तो सीख ही सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्ट भी यदि अपनी बात पर अडिग रहे, अपना वचन निभाता रहे, तो संभव है कि भगवान उसे माफ कर दे, जैसा कि राजा बलि के साथ हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरी कहानी में शैलेंद्र भारती के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।